शिक्षार्थी, जैसे आप जानते हैं कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो घर घर में लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। किसी भी धर्म जाति के लोग राम के जीवन से परिचित हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रेम कुमार तिवारी जी हैं, जो इस विषय में आपको विस्तार से तुलसीदास की भाषा और उनसे लिया गया एक प्रसंग भरत का भर्तृप्रेम, इस पर चर्चा करेंगे।
धन्यवाद अंशुमान जी। शिक्षार्थियों, उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में एक पाठ है जो आपने पढ़ा होगा, तुलसीदास। और तुलसीदास की दो चौपाइयां और दोहे इस पाठ में उद्धृत हैं, जिनका अध्ययन आपने किया होगा। उसी विषय पर चर्चा के लिए मैं आया हूं, और इसके पहले कि इस विषय पर चर्चा शुरू करूं, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि महत्व क्या है तुलसीदास का। शिक्षार्थियों, आपने ये पढ़ा होगा या जाना होगा कि भक्ति आंदोलन एक बहुत व्यापक आंदोलन भारत में शुरू हुआ, और उसे शुरू करने वाले लोग दक्षिण भारत के थे। बल्कि एक दोहा भी आपने सुना होगा, काफी लोकप्रिय है, प्रचलित है, कि द्राविण भक्ति उपजी लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने सप्तदीप नौखंड। तो सप्तदीप कहा जाता था हिंदुस्तान को, भारत को। तो जो भक्ति द्राविण में उपजी, जो भक्ति दक्षिण भारत में पैदा हुई थी, उस वह भक्ति रामानंद के माध्यम से, स्वामी रामानंद के माध्यम से उत्तर भारत में आई, पूरे भारत में फैली, और उसे सर्वप्रथम कबीर की वाणी से प्रसारित होने का अवसर मिला। रामानंद जी बहुत बड़े संत थे, बहुत विद्वान और दार्शनिक भी थे। तो इनके द्वारा प्रचलित राम भक्ति के दो मार्ग थे। दो मार्गों में इन्होंने अपनी भक्ति को प्रकट किया। निर्गुण मार्ग के रूप में उसका विकास कबीरदास, दादू दयाल आदि निर्गुण परंपरा के भक्तों में हुआ। परंतु स्वयं स्वामी रामानंद निर्गुण मार्ग के उपासक नहीं थे। उनकी लिखी समझे जाने वाली पुस्तकों से उनका सगुणोपासक होना सिद्ध होता है। वे साधना के क्षेत्र में निर्जीव आचारों को बहुत महत्व नहीं देते थे। उनका उपदेश शिष्यों के ही संस्कार और रुचि के अनुकूल विकसित हुआ। उनका उपदेश भगवान की अनन्य भक्ति करना ही था, इसी को वो बड़ा समझते थे। यह एकांतिक भक्ति ही उनका एकमात्र उपदेश था। इसके साथ ही रामानंद के शिष्यों ने एक और सर्वसामान्य तत्व उनसे ग्रहण किया, राम नाम। निर्गुण और सगुण दोनों ही मार्ग के अनुयायी भक्तों ने उनसे इस महामंत्र को ग्रहण किया। राम नाम के बारे में दोनों मतों में कोई विरोध नहीं है। राम के अर्थ के बारे में अवश्य दोनों मतों में मतभेद है। कबीरदास इसका मर्म दूसरा ही बताते हैं, और सगुण मार्गी भक्त कुछ और ही बताते हैं। कबीर ने कहा था कि दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। लेकिन तुलसीदास इससे सहमत नहीं थे। मानो इसी उक्ति का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। उन्होंने राम को दशरथ सुत और कौशलाधिपति भगवान के रूप में ही स्वीकार किया। इन दोनों प्रकार के भक्तों के मन में मतभेद राम के अर्थ के संबंध में था। निर्गुण मार्गी अवतारों में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनके राम दशरथ सुत नहीं हो सकते थे। किंतु सगुण मार्गी अवतारों में पूर्ण आस्था रखते थे, इसलिए उनके राम दशरथ अजीर बिहारी नर रूपधारी थे। यही दोनों के दृष्टिकोण में अंतर हो जाता है। तो आपने देखा कि कैसे सगुण भक्त और निर्गुण भक्तों में ईश्वर के स्वरूप को लेके, उनके काम को लेके, उनके सगुण साकार रूप और निर्गुण रूप को लेके विरोध तो था, लेकिन उनके नाम और उनकी महिमा को लेके दोनों में कोई विरोध नहीं था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सगुण मार्गी तुलसीदास ईश्वर के सगुण साकार मानवीय रूप की बात करते हैं, और इस पाठ में जो चौपाई हम पढ़ेंगे।
तिवारी जी, इससे पहले मैं चाहता था कि थोड़ा सा शिक्षार्थियों के लिए अगर यह स्पष्ट कर सकें, सरल शब्दों में अगर शिक्षार्थी ये समझना चाहे कि सगुण और निर्गुण में अंतर करना चाहे साहित्य के माध्यम से, तो उसकी पहचान कैसे करे?
देखिए, सगुण का अर्थ होता है जिस जो गुणों और जो अवतार के रूप में जो देवता जो विष्णु के विभिन्न अवतार हुए हैं, उन अवतारों की उपासना करना, उनके प्रति भक्ति भावना रखना ही सगुण माना गया है। निर्गुण का अर्थ है सगुण साकार रूप नहीं। जैसे हम मूर्ति देखते हैं मंदिरों में, उस मूर्ति में हम चक्रधारी विष्णु को देखते हैं, राम को धनुर्धारी के रूप में देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं हम चक्र लिए हुए, या जो लीला करते हैं मानवीय रूप में लीला उन्होंने की है, जो अवतार रहे हैं विष्णु के, राम और कृष्ण मुख्य अवतार रहे हैं, ये हमारे शिक्षार्थी भी जानते हैं। तो इन रूपों को हृदयंगम करके, हृदय में बसा के उनके प्रति जो भक्ति भावना हम प्रकट करते हैं, वो तो सगुण साकार रूप की हम भक्ति करते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर के इस मानवीय रूप को, मनुष्य की तरह दिखने वाले रूप को न स्वीकार करते हुए पर ब्रह्म के रूप में, एक ऐसी शक्ति के रूप में कामना या कल्पना करते हैं जो दिखाई नहीं देता है, जो अदृश्य है, जो पूरे प्रकृति में विराट रूप में है लेकिन वह दिखाई नहीं देता है, उसका कोई पिता नहीं है, वह किसी का पुत्र नहीं है, उसकी कोई जननी नहीं है, ऐसे ईश्वर को, ऐसे देवता को, ऐसे भगवान को निर्गुण रूपधारी कहते हैं, उसका कोई रूपाकार नहीं है। लेकिन जब हम सगुण भक्त की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कृष्ण के भाई हैं, राम के भाई हैं, राम के पिता हैं, उनकी माँ है, उनकी पत्नी है, रावण का संग्राम हुआ, ये सब हम देखते हैं। तो इस चौपाई के माध्यम से जो अब मैं अपने शिक्षार्थियों के सामने रखूंगा, मैं दिखाऊंगा कि कैसे सगुण साकार जो राम है वो कितना मर्यादा है, और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा भी गया है, कैसे भ्रातृत्व प्रेम वहां पे हम देखेंगे, और उस भ्रातृत्व प्रेम के जरिए हम उस समय और समाज को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले रामचरितमानस, जो कि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है तुलसीदास का, और इसकी प्रसिद्धि का प्रमाण ये है कि हर हिंदू के घर में रामचरितमानस अवश्य पाया जाता है। बल्कि ये कहा जाता है कि अगर प्रकाशकों से पूछा जाए कि जो पुस्तक सबसे अधिक बिकने वाली है हिंदुस्तान में वह कौन सी है, तो उसके जबान पर सिर्फ एक ही पुस्तक का नाम आएगा, और वो है रामचरितमानस। आइए शिक्षार्थियों, सबसे पहले हम रामचरितमानस से उद्धृत उस चौपाई को पढ़ते हैं जो भ्रातृत्व प्रेम को हमारे सामने रखता है, भरत और राम के प्रेम को हमारे सामने रखता है। यह प्रसंग चित्रकूट का है, जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है और राम वनवास के लिए निकल पड़े हैं भरत लक्ष्मण और सीता के साथ, और जब यह बात अपने ननिहाल से लौटने के बाद भरत को पता चलती है कि भाई राम वनवास को चले गए हैं 14 वर्ष के, तब उन्हें बहुत पीड़ा होती है, और उन्हें समझाने बुझाने के लिए और पुनः अयोध्या लाने के लिए वो भी अपने दोस्तों मित्रों और गुरुजनों के साथ राम को मनाने के लिए चल पड़ते हैं। चित्रकूट में सभा लगी हुई है, राम सीता लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ सब लोग वहां पे उपस्थित हैं, और वहां भरत भी पहुंचते हैं अपने कुल के लोगों के साथ, और ये उद्धृत जो चौपाई का अंश है उसे मैं पढ़ रहा हूं। सुनिमुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल लख अपने सिर सब छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं बिचारू, पुलक शरीर स्वभाव है ठाढ़े, नीरज नयन नेहजल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहां मैं काहा, मैं जानौ निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोह न काहू, मो पर कृपा सनेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी, सिस्पन ते परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीतजिय जोही, और हारेउ खेल जितावहि मोही, महु सनेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, दशरथ दर्शन त्रिपितन आज लग प्रेम पियासे नयन। ये चौपाई अवधी भाषा में है, अवधी भाषा अवध अर्थात अयोध्या के आसपास की भाषा है, और इसी भाषा में रामचरितमानस लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसके एक एक शब्दों का एक एक वाक्य का अर्थ आप जब समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। शिक्षार्थियों, पहला जो मैंने वाक्य पढ़ा कि सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, भरत ने जब ये देखा कि मेरे ही पक्ष में श्री रामचंद्र हैं और गुरु भी मेरे ही अनुकूल हैं, तो उन्होंने यह समझा कि अब सारा बोझ अपने ही ऊपर आ पड़ा है। यानी भरत ने अब अपने ही ऊपर सारे बोझ को मान लिया कि जो कुछ कहना है करना अब उन्हीं पर है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ और राम उन्हीं के पक्ष में है, क्योंकि राम भरत की तारीफ में ही कह रहे थे लखी अपने सिर सब छरु भारू, सारा भार अपने ही सिर पर वो समझने लगे, कहीं न सकहीं कछु कर ही विचारू। और वे विचार करने लगे कि क्या कहूं मैं, पुलक शरीर स्वभाव है ठारे। जब उनको ये पता चला कि राम और वशिष्ठ गुरु मेरे पक्ष में है और मुझे इस सभा में खड़ा होकर कुछ बोलने का अवसर दिया जा रहा है, तो शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए, बहुत ही आनंदित हो गए। उनके कमल के नेत्रों से, कमल समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। नीरज नयन नेहजल बाढ़े, नीरज के समान नयन अर्थात कमल के समान नयन में जल बढ़ गए अर्थात आंसू आ गए, ये प्रेम के आंसू थे। मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निभा दिया, उन्होंने कहा कहब मोर मुनिनाथ निभा, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने अर्थात गुरु वशिष्ठ ने निभा दिया, जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। एहते अधिक कहूं मैं कहा, इससे अधिक मैं और क्या कहूं। खड़े हैं भरत कुछ कहने के लिए लेकिन कुछ कहते नहीं बन पा रहा है। मैं जानू निजनाथ स्वभाव, कहते हैं कि मैं अपने स्वामी, मैं अपने भाई राम का स्वभाव जानता हूं। कैसा स्वभाव है, कहते हैं अपराधियों पर कोह न काहू, वो तो ऐसे स्वभाव के हैं जिन्होंने अपराध करने वाले अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं किया, मुझ पर वो क्या क्रोध करेंगे, मो पर कृपा स्नेह विशेखी, और मुझ पर तो उनकी हमेशा विशेष कृपा रहती है, विशेष स्नेह रहता है, मुझसे तो बेहद प्रेम करते हैं। खेलत खुनिस न कबहू देखी, और मैंने तो राम को देखा है अपने भाई अपने स्वामी, वो राम को स्वामी की तरह देखते हैं। भरत कहते हैं कि मैंने तो उन्हें खेल में भी देखा है, कभी वो अप्रसन्न दिखाई नहीं देते। खेलत खुनिस, खुनिस मतलब खीस गुस्सा, खेलते में भी उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी क्रोध नहीं किया, कभी अप्रसन्नता नहीं दिखाई। असिस्पन ते परिहरे उन संगु, और बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। देखिए इस पंक्ति में कितनी अच्छी बात कही है तुलसीदास ने कि राम ने, यानी जो स्वामी भरत के स्वामी हैं राम, उन्होंने उनके बारे में भरत कह रहे हैं कि शिशुपन ते परिहरे उन संगु, जो भाई जो मेरे स्वामी राम बचपन से ही मेरा साथ नहीं छोड़े हैं, क्या वो आज मेरा साथ छोड़ेंगे, अर्थात क्या वो मेरे कहने पर पुनः जंगल से क्या अयोध्या नहीं लौट जाएंगे। कभू न कीन मोर मन भंगु, अब यह दूसरी पंक्ति है कि उन्होंने कभी मेरा मान ऐसा नहीं हुआ कि न रखा हो, मेरे मन को कभी उन्होंने तोड़ा नहीं, कभी साथ नहीं छोड़ा और मन को कभी तोड़ा नहीं, यानी मेरे मन के प्रतिकूल उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। तो जब आज मैं श्री राम को मनाने के लिए, अपने प्रभु को मनाने के लिए मैं आया हूं और ये कहने आया हूं कि अयोध्या पुनः चलिए और आप ही का राज्याभिषेक होगा, तो क्या आज वो मेरे मन को तोड़ेंगे, ये आशा ये आकांक्षा भरत लेके आए हैं और कहते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, शिशुपन ते परिहरे उन संगु, उन्होंने बचपन से ही मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, अकबहू नकीन मोर मन भंगु, और उन्होंने कभी मेरे मन के प्रतिकूल काम नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोई, मैंने प्रभु की कृपा करने की रीत को हृदय से भली बात देखा है। मैंने भली बात यह अनुभव किया है कि किस ढंग से राम मेरे स्वामी कृपा करते हैं। हारे हूं खेल जितावहीं मोई, वो तो ऐसे हैं कि मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु जिता देते थे। जब मैं हारने लगता था तो मुझे हारने नहीं देते थे, बल्कि यह प्रयास करते थे राम कि मैं जीत जाऊं। सन्मुख कहीं न बैन, महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तृप्त न आज लग, प्रेम प्यासे नयन। कहते हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोच के वश कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। अर्थात वो आए तो हैं यहां पर मनाने के लिए, और मनाते हुए श्री राम के जब दर्शन वो करते हैं तो उस दर्शन से उनकी आंखें तृप्त हो रही हैं, और वो ये भी कह रहे हैं भरत कि मेरी आंखें आज तक उनके दर्शन से तृप्त नहीं हुई। अर्थात वो हमेशा अपने स्वामी राम को देखते ही रहना चाहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब सखियां सीता से कहती हैं कि कोई भी ऐसा नरधारी मनुष्य रूप धारण करने वाला कोई भी ऐसा नहीं है जो राम के रूप को देखकर मोहित न हो जाए। इतना सुंदर, इतना सलोना राम का रूप है कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाएगा। और भरत ने भी इस प्रसंग में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मेरे नेत्र कभी राम के रूप को देखकर तृप्त नहीं हुए। शिक्षार्थियों, एक और चौपाई है आपको इस पाठ में पढ़ना है, उसका भी मैं प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। मैं दूसरी चौपाई भी पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुने। विधि न सकेऊं सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, यहु कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि कोभा, मात मंदि में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरै की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव किसंबुक काली, सपनेहु दोष कलेसु न काहू, मोर अभाग उदति अवगाहु, बिनु समझे निज अध पर पाकू, अजारी उजाय जननी कहीं काकू, हृदय हेरी हारेउ सब ओरा, एकई भांति भलई भल मोरा, गुरु गोसाई सब ही सियरामु, लागत मोहि नीक पर नामु। इसमें भरत कहते हैं कि इसमें दोष किसी का नहीं है। ये जो प्रसंग आन पड़ा है कि राम को वनवास दिया गया, ये असल में मेरे और राम के बीच जो स्नेह था, जो राम का मेरे प्रति दुलार था, जो प्रेम था, यह प्रेम विधाता को देखा नहीं गया। विधाता ने इस प्रेम को न सहन कर सकने के कारण ही मेरी मां के बहाने, और यहां पे भरत कहते हैं कि नीच बीच जननी मिस पारा, अपनी माता को नीच शब्द से पुकारते हैं, नीच शब्द कह के संबोधित करते हैं कि नीच बीच जननी मिस पारा, विधाता ने मेरी नीच जननी को मेरे और राम के बीच में फर्क डालने के लिए, अंतर डालने के लिए इस नीच जननी के बहाने ही यह काम किया है। बहाना है यह मेरी जननी। असल बात तो यह है कि विधाता ही नहीं चाहता कि मैं और राम प्रेम और दुलार के साथ, स्नेह के साथ रहें। यह कहती मोहि आजु न शोभा, यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। अपनी समझ साधु सिच को भा, यह किसे शोभा देता है कि कि वह अपने को ही साधु और पवित्र कहे। कोई भी व्यक्ति पवित्र और साधु तभी माना जाता है समाज में जब लोग उसे इस रूप में देखें। जब समाज के लोग साधु के रूप में किसी व्यक्ति को देखते हैं और पवित्र देखते हैं तो उसे इस पवित्रता के साथ संबोधित भी करते हैं। तो यहां पर भरत यह बात कहते हुए असमंजस में दिखाई देते हैं कि मैं तो अपने को ही साधु और बहुत सुचित मान रहा हूं, बहुत पवित्र मान रहा हूं। मात मंदि में साधु सुचाली, माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। भरत कहते हैं कि मात मंदि में साधु सुचाली, उरअस आनत कोटि कुचाली। ये करोड़ों दुराचारों के बराबर है कि मैं अपनी मां को नीच समझूं, मंद समझूं और स्वयं को मैं बहुत चरित्रवान और बहुत ही पवित्र समझूं। फरई न कोदव बाली सुशाली। अब यहां पे तुलसीदास की काव्य प्रतिभा को हम देख सकते हैं, उस शैली को देख सकते हैं, काव्य शैली को, जिसमें उदाहरण देकर उन्होंने इस बात को कितने ही मार्मिक और कितने ही सुंदर ढंग से हमारे सामने रखा है। कहते हैं उदाहरण देखे कि फरई की कोदव बाली सुशाली। कोदव शिक्षार्थियों एक ऐसा अन्न होता है जो आजकल नहीं दिखाई देता, प्राचीन काल में ये अन्न सामान्य तौर पर लोग खाते थे, इसकी पैदावार भी होती थी, लेकिन ये अनाज बहुत स्वादिष्ट और बहुत बारीक नहीं होता था, मोटा अनाज कहलाता था। तो तुलसीदास के जमाने में तो ये अन्न था ही, कोदव इसका नाम था। और एक धान होता है जो सुशाली नाम का होता है, धान बहुत ही स्वादिष्ट होता है, उसका चावल बहुत अच्छा होता है। तो तुलसीदास यहां बताते हैं कि फरई की कोदव बाली सुशाली, क्या कोदव पौधे की बाली से क्या सुंदर धान पैदा हो सकता है। इसे आज के मुहावरे में हम अगर कहें तो कह सकते हैं कि क्या बबूल के पेड़ से आम तोड़ा जा सकता है। जैसे बबूल के पेड़ से आम नहीं फल सकता, वैसे ही कोदव की बाली से सुंदर धान पैदा नहीं हो सकता। मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। कहते हैं कि क्या काली घोघी मोती उत्पन्न कर सकती है। मोती उत्पन्न करने के लिए तो सीपी ही चाहिए। घुघची से, घोघी से कभी भी सुंदर चमकता हुआ मुक्ता अर्थात मोती पैदा नहीं हो सकता। सपने दोष कलेशु न काहू। सपने में भी किसी को दोष देने का लेश भी नहीं है। भरत कहते हैं मोर अभाग उदधि अवगाहू। वो कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य, मैं इतना अभागा हूं कि मेरा यह अभाग्य ही अथाह समुद्र के समान है। वो इस बात के लिए अपने को बार बार कोसते हैं कि क्यों मेरी मां राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे लिए राजगद्दी का प्रस्ताव दशरथ राजा के सामने रखा है। इसे वो अपने अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य और अभाग्य मानते हैं और कहते हैं कि मोर अभाग उदध अवगाहू। सामान्य नहीं बल्कि समुद्र के समान अथाह अभाग्य लेकर ही मैं पैदा हुआ हूं, इसीलिए यह दिन मुझे देखना पड़ रहा है कि राम मुझसे इतने दूर बिछड़ के चले गए। बिनु समुझे निज अघ परिपाकु, जारी उजाए जननी कही काकू। वो कहते हैं कि यह तो मेरा दुर्भाग्य है, मैंने व्यर्थ में ही अपने मां को इतना कटु वचन कह दिया। वो अपने मां को भी दोषी नहीं मानते, वो अपने भाग्य को ही दोषी मानते हैं। हृदय हे रिहारे उ सब ओरा। कहते हैं कि मैं अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही भांति भले ही भल मोरा। कहते हैं कि एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परुनाम। वो कहते हैं कि अब मेरी भलाई का, मेरे सौभाग्य का कोई रास्ता, कोई ठिकाना अब दिखाई नहीं देता है। अब तो एक ही प्रकार से, एक ही तरह से मेरा कल्याण हो सकता है, वह यह कि जब साधुओं की सभा यहाँ पे जुटी है, गुरु वशिष्ठ और मेरे स्वामी राम हैं, सीता हैं, और यह पवित्र तीर्थ स्थान है, तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि इसका परिणाम निश्चित रूप से मेरे पक्ष में होगा। वो कहते हैं भरत यहाँ पे एक दोहे में अपनी बात को बहुत स्पष्ट ढंग से रखते हैं कि साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूं सुथल सती भाव प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराज। वो कहते हैं कि यह साधुओं की सभा एकत्रित है यहाँ पर और हमारे निकट गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं, हमारे प्रभु राम बैठे हुए हैं और यह इतनी पवित्र भूमि है सुथल, तब ऐसे स्थान में बैठकर कोई झूठ कैसे बोल सकता है। मैं जो कुछ भी बोलूंगा वह सत्य ही बोलूंगा, उसमें कुछ भी प्रपंच नहीं होगा, कोई बात झूठी नहीं हो सकती। उसी बात का विस्तार करते हुए भरत कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ जी और राम यह भली भांति जानते हैं कि मेरी बातें प्रेम से भरी हैं या छल से, झूठी हैं या सच्ची। तो शिक्षार्थियों, आपने देखा कि कितनी विनम्रता हमें दिखाई देती है भरत में, कितना आदर दिखाई देता है अपने भाई, अपने स्वामी राम के प्रति, और कितनी मार्मिक ढंग से वो अपने माँ को भी दोषी नहीं देते हैं, बल्कि स्वयं अपने को दोषी देते हैं कि मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र के समान है, इसी वजह से मैं इस स्थिति में हूं कि राम मेरे स्वामी मुझसे इस तरह से दूर हो गए हैं। तो शिक्षार्थियों, इन दोनों चौपाइयों को आपने अध्ययन किया, इस पर विचार मैंने किया, आपने सुना। इसके अलावा मैं तुलसीदास की कुछ और विशेषताओं पर आपके सामने प्रकाश डालूंगा।
डॉक्टर तिवारी, मैं इसमें जानना चाह रहा था कि अगर आज के संदर्भ में अगर हम इन चौपाइयों को देखें, जो आज का परिवेश है, जैसी भौतिकवादिता का जोर है और एकल परिवार की जो संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में ये भक्त प्रेम जो है या भाई के प्रति इतना लगाव किस संदर्भ में आप देखते हैं, कैसे देखते हैं इसका औचित्य?
देखिए, सामाजिक जो ताने बाने हैं भारतीय समाज के, उसके निर्माण में रामचरितमानस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे जैसे नई परिस्थितियां आती गईं, समाज में जैसे जैसे बदलाव आते गए, उन बदलावों का एक कारण विदेशी प्रभाव भी रहा है। आज एकल परिवार होने के पीछे इन विदेशी संस्कृति या विदेशी जो सामाजिक ढांचा है, उसका भी हम बहुत बड़ा योगदान या बहुत बड़ी भूमिका समझते हैं। इसमें देखिए, एकल परिवार होने से प्रेम में कोई बाधा नहीं पहुंचती है, ये तो मानवीय स्वभाव है। जब हम मानवीय गुणों से भरे होंगे, दया, प्रेम, ममता, करुणा, ये भाव हमारे भीतर जब रहेंगे, तो हमारे भीतर न केवल भाई, पिता, माता, बहन और अपने सभी रिश्ते नातों के प्रति हम बहुत उदार और बहुत ही दयालु और बहुत ही एक मानवीय भावनाओं से भर जाएंगे और सबका आदर करेंगे, सबकी मदद करेंगे, ये भाव तो मानवीय है, लेकिन जब हम लोभ, लालच और इस तरह की स्थितियों से घिर जाएंगे जिसमें हम सिर्फ अपना ही हित चाहेंगे, जिसको हम व्यक्तिवाद कहते हैं, तो जब व्यक्तिवाद की स्थितियां ऐसी पैदा होती हैं कि हम बहुत व्यक्तिवादी हो जाते हैं और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, तब हम हमारे भीतर वो मानवीय मूल्य और मानवीय जो गुण हैं वो कम होते जाते हैं और हम मानवीय संबंधों को कम महत्व देकर भौतिक पदार्थों को अधिक महत्व देने लगते हैं और उन भौतिक पदार्थों के पीछे भागने लगते हैं। तब हमें ये रिश्ते कम मूल्यवान लगते हैं और यहीं पे विचलन आता है और टूट होती है, भाई भाई के बीच में दरार पैदा होती है, भाई भाई के बीच में जो एक कलह और एक क्लेश की स्थिति जो पैदा होती है वो भौतिक चीजों के को लेके ही होती है। आप इसके उदाहरण हमारे समाज में देख सकते हैं।
डॉक्टर तिवारी जी, इसमें मैं आपकी बात को जोड़ते हुए आगे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है और जहां पर आपने अभी ये जो भरत के बारे में जो बात कही, इस बात में मुझे जहां तक ये लगता है कि पाठों के माध्यम से हिंदी साहित्य में खास तौर पे इस ओर विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि जो भी शिक्षार्थी पढ़ें उसे आत्मसात करें। ये बहुत ही सुंदर जो यहाँ पे तुलसी का जो ये रामचरितमानस से जो उद्धृत है, ये अंश पढ़कर एक बार ऐसा लगता है कि जैसे एक पारिवारिक जो माहौल होना चाहिए उसे किस तरह से हम आत्मसात करें इन भावों को, और बहुत सुंदर तरह से आपने इसकी व्याख्या की। मैं चाहूंगा कि थोड़ा और विस्तार से तुलसी की भाषा शैली पे कुछ आप चर्चा करें।
जी अंशुमान जी, भाषा शैली की चर्चा करने से पहले मैं अपने शिक्षार्थियों को ये बताना चाहूंगा कि तुलसीदास का आविर्भाव कैसे हुआ। दरअसल भक्ति आंदोलन की शुरुआत में ही कबीर और नानक जैसे शक्तिशाली संत निर्गुण मार्ग को, निर्गुण भक्ति को तो मिले, परंतु सगुण मार्ग में राम भक्ति को कुछ विलंब से तुलसीदास जैसा भक्त प्राप्त हुआ। वैसे तो सगुण मार्गी राम भक्त भक्ति के क्षेत्र में भी महान साधकों की कमी नहीं थी, परंतु साहित्य के क्षेत्र में और साहित्य के माध्यम से साधना के प्रकाश के विकीर्ण होने में कुछ समय लगा। सन ईस्वी की 16वीं शताब्दी के अंत में यह सुयोग प्राप्त हुआ, परंतु जब वह प्राप्त हुआ तो उसे ऐसे शक्तिशाली महापुरुष का सहयोग मिला कि साधना के क्षेत्र के साथ ही साहित्य का क्षेत्र भी धन्य हो गया। बिरले अवसरों पर ही ऐसे शुभ संयोग प्राप्त होता है जब मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकट करने के लिए इस प्रकार भाव और भाषा का सहारा प्राप्त होता है। 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में किसी समय तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ठीक ठीक तिथि तो मालूम नहीं है, इस पर काफी विवाद भी है, लेकिन किंवदंतियों से यह पता चलता है कि रामचरितमानस का लिखा जाना सन 1575 में आरंभ हुआ, और इसके 30-40 वर्ष अगर पहले हम तुलसीदास के जन्म को माने तो ये समय ठहरता है 1535, यानी 1535 के आसपास तुलसी का जन्म हुआ। और कितनी विडंबना है इस महान संत की कि जब इनका जन्म हुआ तो इन्हें मूल नक्षत्र में पैदा मानकर इनके माता और पिता ने इन्हें त्याग दिया, और इन्होंने लिखा भी है बहुत मार्मिक ढंग से लिखा है कि मातु पिता जग जाय तज्यो अभिधियु न लिखियो कुछ भाल भलाई, कि माता और पिता ने तो जन्म होते ही मुझे त्याग दिया और विधाता ने भी मेरे भाग्य में कोई बहुत अच्छे दिन नहीं लिखे और बहुत अभाव में इनका दिन बीता। तुलसीदास ने जिस समाज को देखा था वो बहुत ही ऊंचे आदर्शों पर चलने वाला नहीं था। उच्च स्तर के लोग विलासिता के पंख में डूबे हुए थे और निचले स्तर के स्त्री और पुरुष दरिद्रता, रोग और शिक्षा के दलदल में डूब रहे थे। वैरागी हो जाना उस समय बहुत मामूली बात थी। नारी मुई घर संपत नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। जिनकी स्त्रियां स्वर्ग सिधार जाती थीं तुलसी के समाज में, और जिनके घर में संपत्ति नहीं होती थी, दरिद्रता होती थी, वह व्यक्ति रोजगार के अवसर भी नहीं ढूंढ सकता था उस समाज में, और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वह अपने सर को मुड़ा के सन्यासी हो जाए। और दूसरा था कि मुस्लिम संपर्क के बाद हिंदू समाज में आत्मरक्षा की जो भावना उत्पन्न हुई थी उसने समाज में अनावश्यक सावधानी का भाव भर दिया था। जाति पात की प्रथा और भी कठोर हो गई थी। जन्म से ही दलित माने जाने वाले लोगों में यदि कुछ भी स्वाधीन विचार उत्पन्न हुआ करता तो वे इस कठोर बंधन की विषम वेदना से विचलित हो जाते और साधु बन जाते थे। तो ये स्थितियां थी तुलसी के समाज की। लेकिन इस महान संत के बारे में हम विद्वानों के विचारों को अगर देखें, उनकी उक्तियों को देखें, तो कई ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी कि हम कभी भूल ना पाएंगे। तुलसीदास का महत्व बताने के लिए अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की तुलनात्मक उक्तियों का सहारा लिया। नाभादास ने इन्हें इनके लिए कहा है कि तुलसीदास कलिकाल का वाल्मीकि है। स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा था। और यह तो बहुत बार कहा है कि उनकी रामायण उत्तर भारत की बाइबिल है। मैंने जैसा कि कहा शिक्षार्थियों कि भारत के हर हिंदू घर में यह पुस्तक मिल जाएगी, इससे पता चलता है कि इनकी ख्याति किस तरह की रही होगी। इन सारी युक्तियों का तात्पर्य यही है कि तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। शिक्षार्थियों, मैं तुलसीदास के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा और फिर जैसा कि अंशुमान जी ने मुझसे अनुरोध किया, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके काव्य पर कुछ और प्रकाश डालूं, तो मैं क्रमशः इसी रूप में अपने को आगे रखूंगा। शिक्षार्थियों, तुलसीदास का व्यक्तित्व उनके ग्रंथों में बहुत स्पष्ट होकर प्रकट होता है। अपने समय में प्रचलित दो भाषाएं थीं, एक अवधि और दूसरी भाषा थी ब्रज भाषा। अवधि क्षेत्र के तुलसीदास थे इसलिए अवधि पर उनका पूरा अधिकार था, लेकिन ब्रज भाषा उस समय की प्रचलित काव्य भाषा थी, इसलिए तुलसीदास ने इन दोनों भाषाओं में बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही कलात्मकता के साथ उन्होंने अपनी रचनाएं की। रामचरितमानस तो उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है और यह ग्रंथ हम सब जानते हैं कि अवधि भाषा में है, लेकिन इतने ही अधिकार के साथ उन्होंने ब्रज भाषा में भी रचना की। यही नहीं, उन्होंने नाना पुराणों और निगमागम का अध्ययन किया था और साथ ही लोकप्रिय साहित्य और साधना मार्ग की दाढ़ी पहचानने का उन्हें अवसर मिला था। मैंने कहा कि उस युग में प्रचलित सब प्रकार की काव्य पद्धतियों को उन्होंने अपनी शक्तिशाली भाषा की सवारी पर चढ़ाया था। उनकी काव्य पद्धति का अध्ययन करने से उनकी अद्भुत समन्वयात्मकता बुद्धि का परिचय मिलता है। शिक्षित जनता में जितने प्रकार की काव्य पद्धतियों का प्रचलन था उन सबको उन्होंने सफलतापूर्वक अपनाया था। चंद के छप्पे, कुंडलिया, कबीर के दोहे और विनय के पद, सूरदास और विद्यापति की लीलागान विषयक भाव प्रधान गीति पद्धति, जायसी, ईश्वरदास आदि की दोहा चौपाई की शैली, गंग आदि भाट कवियों की सवैया कवित्व पद्धति, रहीम के बैरवय, सबको उन्होंने अपनी अद्भुत ग्राहिका शक्ति के द्वारा आत्मसात कर लिया था। तो तुलसीदास एकमात्र ऐसे भक्त कवि हुए जिन्होंने लगभग हर पद्धति, जो भी शैली उस समय की प्रचलित थी, उन सभी शैलियों में उन्होंने लिखकर यह बात प्रमाणित कर दी कि हर शैली में राम कथा को उद्धृत किया जा सकता है। केवल दोहा चौपाई नहीं बल्कि छप्पे की शैली और बर्व। रहीम दास के समकालीन थे तुलसीदास। शिक्षार्थियों, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अकबर के दरबार में जो कवि थे और इनका बड़ा मान सम्मान था, वो रहीमदास थे। और रहीम अब्दुल रहीम खान खाना उनका नाम था। और रहीम और तुलसी समकालीन थे, कई बार इनकी एक दूसरे से भेंट भी होती थी। और बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने की बरवे नायिका भेद के आधार पर। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है रहीम का बरवे नायिका भेद। और जब उसे तुलसीदास ने पढ़ा तो उनके मन में यह विचार आया कि राम कथा को भी वरवे छंद में लिखा जाए, और उन्होंने वरवे रामायण की रचना की। और केवल भाषा और शैली के लिहाज से ही नहीं, केवल भाषा और शैली के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि भाव के दृष्टिकोण से भी तुलसी और रहीम में हम बहुत समानता देख सकते हैं। तो जब आप प्रश्न का उत्तर दें तो तुलसी पर विचार करते हुए उनके समकालीन कवियों पर भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करें तो शिक्षार्थियों आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे और आपकी समझ भक्तिकाल के बारे में और भक्त कवियों के बारे में भी विस्तृत होगी। जैसे तुलसी पर लिखते हुए तुलसी के भावों और विचारों पर बात करते हुए अगर रहीम की कविता को भी आप पढ़ें जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में है, मीरा के पदों को पढ़ें आपकी पाठ्य पुस्तक में है, और इनको जोड़ते हुए एक दूसरे से तुलना करते हुए एक दूसरे में कहां समानता है ये बताते हुए अगर आप प्रश्न का उत्तर देंगे तो वह प्रश्न का उत्तर न सिर्फ बहुत सुंदर ढंग से लिखा जाएगा, बहुत उसके अंदर समझने और जानने के लिए चीजें होंगी, बल्कि आपका भी ज्ञानवर्धन होगा। तो मैं अंशुमान जी से कहूंगा कि वो रहीम के बारे में जो तुलनात्मक ढंग से लिखने की कला है और कैसे आप तुलना तुलसी से रहीम की करेंगे उस पर कुछ संक्षिप्त एक विचार रखें।
धन्यवाद भाई जी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा थोड़ी सी आपकी बात को आगे जोड़ते हुए कि एक हमारे श्रोता जानना चाह रही थी कि किस प्रकार से तुलसी के प्रश्नों के उत्तर में वो ध्यान रखें बच्चे। पहली चीज मैं चाहूंगा कि काव्य सौंदर्य बहुत अहम चीज है, भाव और शिल्प। अगर तुलसी को पढ़ते समय पहले अच्छी तरह से अगर उसके भावार्थ को शिक्षार्थी समझ चुके हैं तो निश्चित रूप से उसकी सूक्ष्मता में जाएं, और उस सूक्ष्मता में जाने के साथ साथ ये ध्यान रखें कि उसकी शिल्प क्या है। आपकी पुस्तक में टिप्पणी में काफी विस्तार से ये चीजें दी गई हैं। डॉक्टर तिवारी ने बहुत ही विस्तार से सरल अर्थों में चीजें आपको बताई हैं। फिर भी मैं आपको चाहूं कि जैसे उसमें जहां कहीं रूपक और उपमा अलंकार नजर आता है उसको वो ध्यान में रखें, भूले ना किस जगह पर कैसे प्रयोग किया गया है। जैसे यहां पर नीरज के समान कोमल सुंदर आंखों में उपमा नेह का जल रूपक, ये प्रयोग सुंदर प्रयोग है कि यहां पर बड़ी विनम्र शैली में वाक चातुरी जो है देखने को मिली है। डॉक्टर तिवारी ने यहां स्पष्ट भी किया था कि किस प्रकार से कुछ शब्दों में एक अनूठा प्रयोग वहां पर देखने को मिला। भाई के प्रति प्रेम को जिस प्रकार से दर्शाया गया वहीं मां के प्रति भी सम्मान की भावना नजर आई। इन चीजों को आत्मसात करते हुए समझते हुए और खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि हमें किन किन बिंदुओं पर अपनी बातों को केंद्रित करना है, और इस तैयारी के साथ ही हम परीक्षा में जाएं ताकि भावार्थ और उसके शिल्प को अच्छी तरह से वहां लिख सकें। जहां तक बात डॉक्टर तिवारी ने की कि उस काल की भक्ति काल के विस्तार से चर्चा की इन्होंने, उस काल में जहां एक और तुलसी अवधि और ब्रज में अपनी रचनाएं कर रहे थे वहीं एक कवि और रहीम, जिनका नाम मेरी मान्यता से तुलसी के बाद वो एक बहुत बड़ा नाम है जो अवधि और ब्रज में उनके समान पकड़ रखते थे। हालांकि उन्होंने संस्कृत और फारसी में भी अपने ग्रंथ लिखे हैं, रचनाएं की हैं, किंतु अगर देखें अवधि और ब्रज में भी उनकी पकड़ बड़ी महत्वपूर्ण थी। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें पूरे काव्य को, उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम को, तो तुलसी के बाद या मीरा की चर्चा भी की, ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल और रीति काल को जोड़ने का जो एक अगर हम कहें बात, तो रहीम का कहीं ना कहीं उसमें योगदान रहा है। भक्ति काल को रीति काल की ओर ले जाने की प्रक्रिया में वो एक मिलान बिंदु थे। आपके पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों दोहे हैं, जो कहीं आपके दोहे नीति को दर्शाते हैं, तो वहीं भैरवे जो हैं वो रीति काल की ओर ले जा रहे हैं। सोरठ में भी आपको वो श्रृंगार नजर आएगा। रहीम की जो लेखन शैली रही, उसमें भक्ति नीति और श्रृंगार का अत्यंत सुंदर रूप प्रस्तुत किया गया है। उन्हें सच कहें तो लोक व्यवहार का बहुत अच्छा ज्ञान था। तुलसी में आपने जिस तरह से देखा कि किस प्रकार से उन्होंने उदाहरण शैली अपनाई, और तिवारी जी ने बताया कि किस प्रकार से एक पौधा जिसमें से आप कोई अच्छे से धान की उपज की सोच नहीं सकते, या उसके लिए इन्होंने एक बड़ी अच्छी लोकोक्ति भी कही थी कि आम नहीं मिलेगा अगर हम किस पौधे का नाम लिया था आपने,
बोया पेड़ बबूल का
तो आम कहां से हो। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार के देखिए ये उदाहरण शैली है जिसके माध्यम से बातें कही। और अगर मैंने जहां तक रहीम को अध्ययन किया है, उनके हरेक दोहे में कहीं ना कहीं दृष्टांत जरूर होते हैं। आम लोग जीवन से जुड़ी हुई बातें आप सभी दोहे, जिसमें 7 या 8 दोहे हैं आपके पाठ्यक्रम में, अगर इनको आप देखें तो वो कहीं ना कहीं आपको हर एक उदाहरण के साथ अपनी बात को रखते हैं। आसपास के क्रियाकलाप, प्रचलित प्रसंग व कथा के उदाहरण देकर जिस प्रकार से उन्होंने प्रत्येक दोहों में अपनी अपने विचारों को पिरोया है, वो अत्यंत दर्शनीय है। अगर उनके दोहे के साथ मैंने कहा कि जैसे सोरठ हैं और बरवे हैं, वो रीति काल से जोड़ते हैं। रीति काल असल में शिक्षार्थियों उस ओर ले जाता है जहां श्रृंगार की प्रधानता हो जाती है। भक्ति और नीति का दौर जो था वो काल वातावरण कुछ ऐसा था जिस समय भक्ति काल अपने चरम पे था, और इसके बाद रीति काल की ओर जो श्रृंगार की प्रधानता आई, वहां पर कहीं ना कहीं एक मिलान बिंदु के रूप में रहीम ने अपने विचार प्रकट किए, अपने दोहों के माध्यम से, सोरठ के माध्यम से। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि किस प्रकार से हम रहीम और तुलसी की तुलना को देख सकते हैं। जहां देखिए, अगर रहीम ने आत्मसम्मान के बारे में, दुनिया के बारे में जब बातें की, तो वहीं इसी तरह की कुछ बातें तुलसी ने भी की थी। आवत ही हुलसे नहीं, नैनन ही स्नेह, तुलसी जहां तजाइए कंचन बरसे में। इनमें देखिए कि उसी तरह के कुछ भाव आपको देखने को मिलते हैं जिस प्रकार से कि रहीम ने अपने सोरठ में रहीमन मोहिन सहाय, अभी पिए मान बिहु, वीरु विषय देह भुलाए, मान सहित मरिबो भले। इस प्रकार के कई अर्थों में हम देखें रहीम के और तुलसी की जो बातें हैं कहीं ना कहीं एक जैसी नजर आती हैं। तो मेरी यही इच्छा है कि, और यही एक सलाह है कि आप लोग प्रत्येक दोहों को और पाठ में जिस प्रकार से पुस्तक में हरेक दोहों के साथ भी तुलसी के जो दोहे हैं या तुलसी के जो विचार हैं वो स्पष्ट रूप से आए हैं। इस पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं है, बहुत स्पष्ट है। और छोटे छोटे दोहों में भी अगर हम कोई भी एक दोहा रहीम का अगर लेना चाहें, जिसमें देखेंगे किस प्रकार से उनकी भाषा रही है। एक दोहा अगर हम यहाँ ये लेते हैं, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सोबा, रहीमन फिरी फिरी पोरिए टूटे मुक्ता हार। इसमें भी किस प्रकार से सुजन में श्लेष अलंकार का प्रयोग है। असल में जब हम किसी भी दोहे को या किसी पद को पढ़ रहे हो, तो इस बात का शिक्षार्थी पूरी तरह से ध्यान रखें कि उन्हें मुख्य बिंदु के रूप में चिन्हित कर लें, ताकि परीक्षा के समय उन्हें मालूम हो कि हमें किसी भी दोहे के भावार्थ लिखते समय किन मुख्य बिंदुओं को हमने निश्चित तौर पर उसमें उल्लेख करना है। जहां मैंने इस पूरे दोहे का अर्थ आप इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, और समय के अभाव में मैं सबके विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहूंगा, किंतु जैसे खास तौर पर मैंने कहा श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार या रूपक अलंकार जिन जिन जगहों पे है, वह पूरी तरह से तैयार कर लें, ताकि परीक्षा के समय में वह अपनी रणनीति बनाकर परीक्षा में जाएं, ताकि कम शब्दों में अच्छे से उत्तर और भाव के साथ अपने उत्तरों को लिख सकें वो। तिवारी जी, जहां तक चाहता हूं, समय का अभाव है, तो तुलसी और रहीम का जहां तक प्रश्न है, इन दोनों के अवधि और ब्रज में जो पकड़ है उसको मेरे विचार से अगर बच्चे तुलना करके इसको समझने की कोशिश करें तो दो पाठ एक साथ तैयार हो जाते हैं।
बिल्कुल अंशुमान जी, आपने ठीक कहा। और अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए शिक्षार्थियों को मैं कुछ और बातें परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे वो तैयार करें इस पाठ को, इस पर मैं कुछ बताऊंगा। पहली बात तो शिक्षार्थियों, आप जब परीक्षा के लिए तैयारी करें और तुलसीदास जो पाठ आपका है जिसमें दो चौपाई और दोहे दिए गए हैं, इन पाठों में जो शब्द आए हैं अवधि के, उन शब्दों से कई बार ऐसे शिक्षार्थी होते हैं जो परिचित नहीं होते हैं, क्योंकि अवधि शब्द आज बोलचाल से बहुत दूर हो गई है हमारे समाज में। तो इन शब्दों को आप उनके अर्थ के साथ पढ़ें और समझें। जब तक आप इन अवधि शब्दों का अर्थ ठीक से नहीं जानेंगे, तब तक आप कविता के न भाव को समझ पाएंगे, न उसके विचार को समझ पाएंगे और न ही उसकी व्याख्या कर पाएंगे। तो सबसे पहले कि अवधि भाषा के जो कठिन शब्द हैं उनको आप ठीक से जान लें, समझ लें, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में हाशिए पर लिखे गए हैं। दूसरी बात कि जो भाव दिए गए हैं उन भावों को पूरी व्याख्या के साथ आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, उस व्याख्या को आप ठीक से पढ़ें, हृदयंगम करें, मन में उसको रखें और बार बार चौपाई पढ़ते हुए उसे समझने की कोशिश करें। तो अगर मैं ये देखूं कि आपने इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद क्या सीखा, तो जो दो चार बिंदु हैं वो इस तरह से हैं कि इस पाठ में राम और भरत में परस्पर गहरा प्रेम है, भरत के मन में राम के प्रति आदर का भाव है और वे चाहते हैं कि राम अयोध्या वापस लौट चलें और उनके साथ ही रहें। दूसरा बिंदु है कि आवेश में कैकेयी के प्रति कहे वचनों के लिए भरत के मन में पश्चाताप भी दिखाई देता है। तीसरा बिंदु हम ये देख सकते हैं कि तुलसी की भाषा और कथन भंगिमाओं की भी अपने आप में अनेक विशेषताएं हैं। कवि शब्दों का प्रयोग बड़ी चतुरता से करता है, मनोभावों के चित्रण में वह सिद्धस्थ दिखाई देता है। चौथा बिंदु है अनुप्रास के अतिरिक्त इस पाठ में, इन चौपाइयों में, हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग देखते हैं कि बहुत ही सुंदर ढंग से तुलसी ने किया है। और एक बिंदु है कि तुलसी ने इस रामचरितमानस की रचना अवधि भाषा में की है। तो इन पांच बिंदुओं को आप ठीक से समझें और इनके आधार पे आप अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करें। प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र में अलंकारों से आएंगे, इन अलंकारों की व्याख्या और इन अलंकारों का स्पष्टीकरण आपकी पाठ्यपुस्तक में पीछे दिया गया है, इसको आप पढ़ के ठीक से समझ सकते हैं। तो शिक्षार्थियों, आप ने ये दोनों चौपाई पढ़ी और भरत और राम के प्रेम के बारे में इतना समझा। अंत में मैं यही कहूंगा कि तुलसीदास का महत्व है और हमेशा रहेगा, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि चाहे वो शिक्षित व्यक्ति हो या कम पढ़ा लिखा अशिक्षित व्यक्ति, ग्रामीण में इलाके अंचल में रहता हो या शहरी अंचल में, यह चौपाई और यह पंक्तियां रामचरितमानस की सबके जबान पे रहती हैं कि रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। इस तरह की बातें, इस तरह की चौपाइयां और दोहे जो तुलसी ने लिखे हैं, वो हर घर में हमारे बुजुर्ग और हमारे लोग, आसपास के लोग पढ़ते और बोलते हैं। धन्यवाद।
जिस प्रकार से प्रेम तिवारी जी ने आपने ये बात बताई, और जहां राम की बात हो रही है और इनके बच्चों के लिए बड़ा लाभकारी है कि कृष्ण की चर्चा भी मीरा ने कर दी है।
जी बिल्कुल,
पूरा पाठ्यक्रम एक तरह से भक्ति काल को समर्पित सा नजर आता
बिल्कुल,
है।
बिल्कुल।
और तुलसी ने आज तो ये आपने राम की चर्चा की, तुलसीदास जी ने कई शिक्षार्थियों को नहीं मालूम होगा कि कृष्ण पर भी जो है अपने रचनाएं की हैं।
बिल्कुल।
और जो मेरे ख्याल से ब्रज भाषा में
है। जी, कृष्ण गीतावली है जो कृष्ण पर लिखी गई है और मुक्तक है वो। हाँ। उसमें कोई प्रबंध काव्य नहीं, वो मुक्तक काव्य है।
जी जी।
तो अलग अलग लीला प्रसंगों को लेकर कृष्ण के ये रचना उन्होंने की थी।
हमारी शुभकामनाएं हैं इन शिक्षार्थियों के साथ, बहुत अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें। और साथ ही यह निवेदन भी है, आग्रह है कि तुलसी की इन्हीं रचनाओं तक वो सीमित न रहें, बल्कि तुलसी की जो अन्य रचनाएं हैं, पूरा रामचरितमानस है, उसको आत्मसात करें और एक अच्छे जो है भविष्य की कामना करते हुए मैं विदा चाहता हूं।
धन्यवाद।